नमस्कार, बोधि वार्ता में आप सभी का स्वागत है। अनुभव करता वो है जो हर अनुभव का अनुभव कर रहा है अभी इसी वक्त। आप उसको देख नहीं सकते क्योंकि हमने जैसे कि परीक्षा की, अनुभव करता की, उसको वस्तु की तरह समझना संभव नहीं है। वो अपने तरह की एक ही है जो बुद्धि के परे है, जो ज्ञान के परे है। आप उसे ज्ञान लेने जाएंगे तो संभव नहीं है। आप बुद्धि से उसका विश्लेषण करने जाएंगे, संभव नहीं है। आज हम थोड़े उन्नत प्रश्न करने वाले हैं, थोड़ा और आगे गहराई में जाके उसकी परीक्षा पूछताछ करने वाले हैं अनुभवकर्ता की। इससे पहले कि मैं और सवाल करूं अनुभवकर्ता के बारे में, मैं आपको मैं के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा कि मैं यानी कि अहम चित्त निर्मित है और उसकी स्थिति बदलती रहती है। एक हमारा मानदंड है अद्वैत में कि जो बदलता है, जो परिवर्तनशील है, वो मिथ्या है, वो असत्य है। तो क्योंकि अहम बदलता रहता है, अहम असत्य है, तो ये पहली बात आपको जरा मन में रखनी पड़ेगी। इसकी पहले से भली भांति परीक्षा कर लें कि अनुभवकर्ता और अहम में क्या भेद है। अनुभवकर्ता अहम भी हो सकता है लेकिन अहम अनुभवकर्ता नहीं हो सकता। बड़ी विचित्र सी चीज है। स्थिति के अनुसार जहाँ आवश्यकता पड़ती है उस हिसाब से मैं अहम की परिभाषा कर देता हूँ। जैसे कि यदि मुझे भूख लगी है या मुझे चोट लगी है तो मैं कहता हूँ कि मुझे भूख लगी है और मुझे दर्द हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि अहम को भूख लगी है और अहम को दर्द हो रहा है। यहाँ पे मैं जो है वो शरीर में स्थित होता है। कभी कभी आप देखेंगे शरीर के बाहर भी उसकी स्थिति होती है। जैसे कि आपकी आपकी कुछ प्रिय वस्तु कोई ले जाए तो बहुत दुख होता है, इतना ही उसमें भी इतना ही पीड़ा उसकी होती है जितनी कि स्वयं शरीर को कुछ नुकसान हो जाए उतनी। एक तरह से आसक्ति होती है उनकी चीज़ों पे, जो 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 उनके मालिक होते हैं अपनी चीज़ों के, जैसे कि उनकी गाड़ी या उनकी बहुमूल्य चीज़ें या उनके नाते रिश्तेदार, उनके दोस्त मित्र, उनको कुछ हो जाए, स्थित हो जाता है। हम जाके आपका जो धर्म है या आपकी जाति है या आपके देश है उस पे भी हम अपना कब्जा दिखा देता है कभी कभी। तो कोई आपके देश को कुछ बोल दे, आपकी क्रिकेट टीम हार जाए तो आपको दुख होता है। इसका मतलब अहम जो है वो निश्चित नहीं है, वो वस्तुओं से लेकर शरीर तक बदलता रहता है और दूसरे लोगों के साथ भी अपना जुड़ा रहता है। तो लेकिन सबसे जो प्राकृतिक उसकी स्थिति है वो है शरीर के साथ है, जो कि 99% से ज़्यादा लोगों का कि यही स्थिति है उनके अहम की। उनका शरीर ही मैं हूँ, मेरा शरीर ही मैं हूँ, ये उनकी जागृत अवस्था में मान्यता रहती है, ऐसा ऐसी उनकी परिकल्पना रहती है। लेकिन थोड़ी थोड़ी सी परीक्षा की जाए इस बात की कि क्या मैं शरीर हूँ, तो पता चलता है कि मेरा शरीर तो बदलता रहता है, बचपन में जो था वो अब नहीं है, तो कौन सा शरीर हूँ मैं, ये प्रश्न आता है कि जब ये सारा बदल रहा था, ये जो शरीर में जो पदार्थ है वो बदलते रहते हैं, जीवन क्रिया है वो चलती रहती है और सारे पदार्थ उसमें से आते जाते रहते हैं, उसमें भाव है पदार्थ का शरीर, तो कल जो मैं था वो आज नहीं हूँ, कल नहीं रहूंगा, तो फिर मैं क्या हूँ जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ है जबकि शरीर जो है बदल रहा था। तो कुछ लोग जब इसकी परीक्षा करते हैं तो वो कहते हैं नहीं, मैं अपना मन हूँ, जो मेरा नाम है वो मैं हूँ, जो मेरा काम है वो मैं हूँ, या जो मेरे माता पिता ने मुझे बताया है वो मैं हूँ, ये सारे रिश्ते मैं हूँ, और शरीर तो ठीक है वो बदलता रहता है, वो तो मशीन है, लेकिन इसके पीछे जो मन है, मनस है, वो मैं हूँ। इतना भी आप अगर जान ले तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप अभी 90% जनसंख्या के ऊपर आ गए हैं, तो ये भी काफ़ी समझदारी की बात है कि मैं शरीर नहीं हूँ। लेकिन आम आदमी मन पर भी अटक जाता है, अहम मन पर स्थित हो जाता है कभी कभी कि मेरे ये जो भाव है मन में, मेरे ये जो विचार है या मेरी जो बुद्धि है, मेरा जो काम है, मेरा जो व्यवसाय है, वो मैं हूँ। तो मैं या तो बिजनेसमैन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, या मैं बुरा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा स्वभाव वैसा है, और मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, शरीर की चिंता नहीं है मुझे, वो तो खैर अन्न से बना हुआ है, लेकिन मन मैं हूँ। तो मन आप देखेंगे वो भी परिवर्तित होता रहता है, आपकी इच्छाएं बदलती रहती है, विचार आते जाते रहते हैं, पसंद नापसंद बदलती रहती है। आप देख लीजिए, हो सकता है 2-3 दिन में नहीं बदले, लेकिन 2-3 महीनों में या 2-3 साल में बदल जाती है, और स्वभाव बदल जाता है, व्यवसाय बदल जाता है। नाम में क्या रखा है, नाम तो आप हर 5 मिनट में भी बदल सकते हैं। जो लोगों ने आपको नाम दे दिया है, किसी तरीके से अहम वहाँ से स्थित हो जाता है, क्योंकि सब उसी नाम से आपको बुलाते हैं। भ्रांति या भ्रम हो जाता है कि नाम मैं हूँ, बहुत लोगों में होता है ये, लेकिन थोड़ी सी उनकी स्थिति अच्छी है उन लोगों से जो कि शरीर को मैं मानते हैं, या जो वस्तुओं को, या अपने घर को, या अपनी गाड़ी को, या अपने समाज को, या देश को मैं मानते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, तो उनसे काफ़ी अच्छी स्थिति है। लेकिन मन भी बदलता है, वो क्या है जो कि इस बदलते हुए मन का भी साक्षी है, तभी तो आप मैं कह सकते हैं उसे, नहीं तो मैं तो आज था और कल नहीं, तो फिर वो मैं कैसे हो गया, मैं तो हमेशा से रहा है। तो जो बदला नहीं है वो मैं हूँ, आप ऐसा कह सकते हैं, थोड़ा सा और उसकी स्थिति अच्छी कर सकते हैं। एक आध्यात्मिक शिष्य होता है, उसके लिए बहुत आसान है ये समझना कि मैं साक्षी हूँ, मैं वो हूँ जो इन बदलते हुए अनुभवों का साक्षी हूँ, अनुभव करता हूँ, मैं नहीं बदलता। यदि अहम अनुभवकर्ता पर स्थित है, आत्मन पर स्थित है, तो आप देखेंगे वो कभी नहीं बदलता, वैसा का वैसा ही है जो अनुभव कर रहा है, जो न दिखाई देता है न सुनाई देता है, जैसा कि हमने पिछली बार देखा, लेकिन है वहाँ पे कुछ जो अनुभव करता है। और मैंने जैसे कि शुरू में बताया था कि वो अस्तित्व खुद है, स्वयं अस्तित्व अनुभव कर रहा है, अहम की वजह से ऐसा लगता है कि वो शरीर है या फिर मन है या फिर कुछ और है। कभी कभी काल्पनिक हम चीज़ें बना डालते हैं। जो अनुभव करता है वो उसकी स्थिति बदलती नहीं है, वो परिवर्तनशील नहीं है, वो किसी और अनुभव में नहीं बदलता कभी, ये हमने पिछली बार देखा। हर तरह का अनुभव हमने जांच के देखा और पता चला कि वो किसी भी अनुभव से उसकी तुलना संभव नहीं है। अनुभव बदलते हैं, अनुभव करता नहीं बदलता। तो अहम यदि अनुभव करता पर स्थित है तो वो सत्य है, मैं आत्मन हूँ ये कहना सत्य हो जाता है, क्योंकि नहीं बदलता। तो ये बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, ये देख के आश्चर्य भी होगा, क्योंकि ये आम घटना नहीं है। जिसको आत्म परिचय हो गया है, जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया है, उसका यही प्रयास रहता है कि उसका जो अहम है वो अनुभव करता पर स्थित हो जाए, आत्मन पर स्थित हो जाए, यही आपकी साधना है। ये था थोड़ा सा अनुभव करता और अहम का संबंध। तो अभी आगे जो मैं कहने वाला हूँ उसको समझना आसान हो जाएगा। अब आपका जो अनुभव है या आपका जो अज्ञान है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपका अहम कहाँ स्थित है इस समय। हम प्रश्न लेते हैं अनुभव करता के बारे में, और पहला प्रश्न था कि अनुभव करता का काल से क्या संबंध है, यानी कि समय से क्या संबंध है। उसकी न शुरुआत है, न उसका आरंभ है, न उसका अंत है अनुभवकर्ता का। लेकिन आप कहेंगे मुझे तो दिखाई देता है कि समय जो है चल रहा है, समय की गति है, और अनुभवकर्ता कल भी था, आज भी है, 1 साल पहले भी था अनुभवकर्ता। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो समय के परे है, उसकी कोई शुरुआत होनी चाहिए, उसका कहीं ना कहीं आरंभ होना चाहिए। हो सकता है ये मेरा अज्ञान हो कि अनुभवकर्ता का या आत्मन का काल से कोई संबंध नहीं, हो सकता है कि ये अज्ञान हो, और हो सकता है कि ये सत्य हो कि अनुभवकर्ता काल का काल से संबंध है या समय से जुड़ा है अनुभवकर्ता। यदि आप अपना प्रत्यक्ष अनुभव देखें, काल को आप 3 भागों में बांट सकते हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, 3 तरह के काल आप देख सकते हैं। आप यदि कहेंगे कि मैं अहम या अनुभवकर्ता कल भी था, मुझे अच्छे से याद है कि कल भी था वो, और 1 साल पहले भी था, 10 साल पहले भी था, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। यदि आप अनुभव देखें आपका प्रत्यक्ष अनुभव, तो जो कल है, जो भूतकाल है, वो आपकी स्मृति है। आप भूतकाल में जाके नहीं देख सकते कि वहाँ मैं था या वहाँ अनुभव करता था, वहाँ आत्मन था। आप कल में जाके नहीं देख सकते, कल सिर्फ स्मृति बन के आएगा आपके सामने। और वो स्मृति कब हो रही है, स्मृति का समय क्या है, स्मृति का काल क्या है, वो अब है, वो वर्तमान है। क्या आपको कभी ऐसी स्मृति हुई है जो भूतकाल में हुई? स्मृतियों की स्मृति संभव है, वो भी भूतकाल में संभव नहीं है, वो भी वर्तमान में होगी। कि आप कहें मैंने कल कुछ याद किया था, वो ये वाक्य भी आप वर्तमान में ही कह रहे हैं, स्मृति की स्मृति। तो भूतकाल हमेशा स्मृति से आता है, स्मृति हमेशा वर्तमान में होती है, जो अनुभव है उसका हमेशा वर्तमान में होगा, भूतकाल का भी अनुभव वर्तमान में होगा। ये आपका प्रत्यक्ष अनुभव है, ये आपका प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है। आप ऐसा पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा भूतकाल है जो वर्तमान में नहीं है, या आप ऐसा पूछ सकते हैं कि मेरा ऐसा कौन सा अनुभव है जो वर्तमान में नहीं है। आप कहेंगे हाँ कल भी मैं था, कल मैं ऑफिस गया था, कल मैं घर में था और मेरी इससे बात हुई, मेरी इससे मुलाकात हुई। ये आप देखेंगे सारी स्मृतियां हैं जो वर्तमान में चल रही हैं, कभी भूतकाल का अनुभव नहीं हुआ। इसको आप जरा ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत बड़ा ज्ञान है ये। भूतकाल में अनुभवकर्ता कभी नहीं रहा, आप किसी भी अनुभव में नहीं रहा, हमेशा जो है भूतकाल आपको स्मृति बन के ही मिला है और वो हमेशा वर्तमान में ही रहा है। स्मृति की स्मृति भी वर्तमान में रही है, स्मृति का अनुभव भी वर्तमान में रहा है। आप कितनी भी दूर तक याद कर लें, वो अभी वर्तमान में ही याद कर सकते हैं उसको, भूतकाल में जाके याद नहीं कर सकते। भूतकाल में आप कुछ भी नहीं कर सकते, भूतकाल में अस्तित्व भी नहीं है, अस्तित्व को कोई भूतकाल नहीं होता, सिर्फ स्मृति होती है। ये हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है, अपरोक्ष अनुभव है। भविष्य ऐसा ही है, भविष्य परिकल्पना मात्र है। मैं कल कहाँ जाऊंगा, कल क्या करूंगा, कल मैंने क्या कार्यक्रम तय कर रखा है, ये आज की वर्तमान की परिकल्पना है। कल भी मैं रहूंगा, सही बात है, एक महीने बाद भी रहेंगे, सही बात है, या एक साल बाद ऐसा या वैसा होगा, सही बात है, लेकिन ये सारी परिकल्पनाएं हैं, सारे विचार मात्र हैं, चित्त की वृत्ति है जो वर्तमान में चल रहे हैं। क्या आपने कभी भविष्य में जाके कुछ किया है? अभी तक आपने जो भी किया है, जो भी अनुभव हुए हैं, आपको वर्तमान में ही हुए हैं। आप देखेंगे अनुभव करता न भूतकाल में था न कभी भविष्य में रहेगा, हमेशा वर्तमान में ही रहा है। ये भ्रांति क्यों होती है फिर कि मैं कल भी था और कल भी रहूंगा और आज भी हूँ, सुबह भी था, शाम को भी रहूंगा? ये चित्त में आने वाले विचार हैं। अहम जब चित्त पर स्थित होता है तो काल सत्य बन जाता है। इसको आप अच्छे से देखिए, इसको आप ध्यान से देखिए इस बात को। अहम की स्थिति पर निर्भर है कि काल सच है या झूठ। शरीर तो खैर समय में है, मन भी समय में है, चित्त भी समय में है। जो मन के ऊपर है आत्मन, वो समय के परे है। स्मृतियां जब तक है तब तक काल का अनुभव है, और शरीर की भी एक स्मृति है, शरीर भी काल में ही चल रहा है, उसमें बदलाव आते हैं, परिवर्तन आते हैं, और चित्त कहता है कि हाँ ये वही शरीर है जो मेरा था और बदल रहा है। तो बहुत बड़ा बड़ा माया जाल है ये काल का, समय का, बहुत बड़ी भ्रांति है। इसीलिए मैंने उसको विस्तृत अध्ययन में रखा है, सरल अध्ययन नहीं है ये। आपको बार बार देखना पड़ेगा कि आपको काल का अनुभव कब हुआ और वो किस रूप में हुआ। आप देखेंगे हमेशा वर्तमान में हुआ। अहम यदि आपका चित्त पर स्थित है, मन पर स्थित है, तो आपको ये भ्रांति होगी कि हाँ मैं समय में हूँ, आज भी था, कल भी रहूँगा, कल भी था, आज भी हूँ, ये सारे विचार आपके मन में आएंगे, क्योंकि आपका जो अहम है उसका जुड़ाव चित्त के साथ है, और चित्त काल में है, चित्त समय में है, चित्त स्मृति में है, स्मृति ही चित्त है। निष्कर्ष ये निकलता है कि मैं यदि अपनी स्थिति, अपना जुड़ाव अनुभवकर्ता के साथ करता हूँ तो मैं काल के परे हूँ, मैं समय के परे हूँ। यदि मैं सोचता हूँ कि मैं चित्त हूँ या शरीर हूँ तो मैं समय में हूँ। शरीर जन्मा था, शरीर नष्ट होगा, ये बात सत्य हो जाती है। फिर यदि मैं मन के साथ जुड़ा हूँ, मानसिक समझता हूँ अपने आप को, मानसिक वस्तु या मानसिक प्रक्रिया, तो वो शुरू हुई थी, वो नष्ट होगी एक दिन। जो शुरू होता है वो नष्ट होता है, जो बदलता है वो कहीं शुरू हुआ है, कहीं जाके रुकेगा, जो नहीं बदलता वो कभी शुरू नहीं होता और कभी नष्ट नहीं होता। तो थोड़ी सी पेचीदा सी चीज है कि कभी आपके गुरु जो है कहेंगे कि कल यहाँ यहाँ सत्संग है, या परसों वहां जाके ये कर लो वो कर लो, और अगले दिन वो आपको कहेंगे कि नहीं तुम तो समय के परे हो, तो आप उलझन में पड़ सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, आज अभी तक मैं समय में था, समय मुझ पर शासन कर रहा था, और अभी आप कह रहे हैं कि मैं समय के परे हूँ। आपके गुरु सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि आपने जो अहम भाव है जो आपका कभी शरीर में रहता है, तब आप ये समय के बारे में बोल सकते हैं। जैसे ही वो शरीर से हट के अहम भाव यदि आपका अनुभवकर्ता के ऊपर आ जाए तो समय के परे कह सकते हैं, क्योंकि जो बदलता नहीं है, जो परिवर्तन नहीं होता जिसमें, जो हमेशा रहता, जो कि नित्य है, अनित्य नहीं है, यदि मैं उसको मैं कहूँ तो मैं समय के परे हूँ, ये सत्य हो जाता है, क्योंकि फिर मैं बदलता नहीं। और यही मेरा प्रत्यक्ष अनुभव भी है, यही मेरा प्रमाण है, मेरे सामने जो है यही है कि हमेशा जो अनुभव हुआ है वो वर्तमान का हुआ है, कभी भूतकाल का अनुभव नहीं हुआ, कभी भविष्य का अनुभव नहीं हुआ। ये सिर्फ मान्यताएं हैं, ये सिर्फ परिकल्पनाएं या अवधारणाएं बनी हुई मन में कि भूतकाल होता है, भविष्य होता है। आप कहेंगे लेकिन यदि मैं कहूँ कि समय नहीं है तो फिर मैं खाना कब खाऊंगा, मैं ऑफिस कब जाऊंगा, मैं अपने सारे कार्य कब करूंगा, कोई मुझे बोलता है कि इतने बजे यहाँ पर आ जाना तो फिर मैं कैसे जाऊँगा यदि सब कुछ वर्तमान ही है। तो ये जो समय की जो माया है, क्योंकि सभी इसी में लीन है माया में, तो काफ़ी उपयोगी होता है समय का, समय की जो अवधारणा है काफ़ी उपयोगी होती है। तो जब तक आप शरीर में हैं, जब तक आप चित्त की वृत्ति शुरू है, तब तक जो समय की अवधारणा है इसके लिए काफ़ी अच्छी उपयोगी अवधारणा है। इसके बिना इसका जीवन संभव नहीं है, समय के बिना। इसीलिए आप देखेंगे वो चित्त छोड़ता नहीं है समय को, आपकी भाषा भी समय से भरी है, समय के बिना आप बोल भी नहीं सकते। जब तक ये चित्त की क्रिया चल रही है, जब तक संसार चल रहा है, तब तक आप समय के घेरे में रहेंगे, समय के रस्सियों में, पाश में बंधे रहेंगे। उससे छूटना बहुत आसान है, अपना जो अहम है आत्मन पे ले आइए, आप देखेंगे आप कभी भी समय के पाश में नहीं थे, समय के हमेशा परे थे। सिर्फ आपका जो जुड़ाव है, आसक्ति मन या शरीर से हो गई, जो कि समय से जुड़े हैं, जो कि समय के भ्रम में रहते हैं, इसलिए आपको लगा कि मैं भी समय से बंधा हूँ, मैंने भी एक दिन जन्म लिया है और मेरी उम्र बढ़ती जा रही है और एक दिन मैं मर जाऊँगा। शरीर ने जन्म लिया है, शरीर का की आयु बढ़ती है, शरीर बढ़ता है, शरीर बीमार होता है, अस्वस्थ होता है और शरीर नष्ट होता है। न चित्त उसमें जुड़ा है, न अनुभवकर्ता शरीर से जुड़ा है। तो ये अज्ञान है मानना कि मैं शरीर हूँ और उसी की तरह नश्वर हूँ, उसी की तरह समय पर निर्भर हूँ। यदि आपको ये ज्ञान हो जाए कि शरीर एक वस्तु है जो आनी जानी है, जो परिवर्तनशील है, जो नश्वर है, जो जन्म लेती है, जिसकी मृत्यु होती है, तो आप यहीं के यहीं इसी वक्त जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे। सिर्फ इतना करना है आपको कि आपके अहम की स्थिति अनुभवकर्ता पर लानी है। मैं वो हूँ जो जन्म और मृत्यु का अनुभव करता हूँ, जो तीनों अवस्थाओं का चित्त की अनुभव करता हूँ, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं का मैं साक्षी हूँ। आपकी छुट्टी हो गई समय चक्र से, संसार से। ये इतना आसान है, बोलना बहुत आसान है, करना भी आसान है, लेकिन वहाँ रहना कठिन है। आप देखेंगे अहम वापस खिसक के नीचे आ जाता है, आपका चित्त चित्त वापस जुड़ जाता है, कहता है कि मैं चित्त हूँ। 5 मिनट क्या, 5 सेकंड भी नहीं रुकता हुआ अनुभवकर्ता पे। तो यही साधना है ज्ञान मार्ग पर, यही साधना है कि हमेशा याद रखना, हमेशा स्मरण में रहना कि मैं क्या हूँ। मैं को उठा के बार बार आत्मन पे रखना, इतनी मात्र साधना है, लेकिन बहुत कठिन हो जाती है। जिन लोगों ने कभी की नहीं उनके लिए कठिन है, आप 1 सेकंड तक भी नहीं रख पाएंगे। वो ज्ञान जो है अज्ञान में बदलता जाएगा, बहुत जल्दी आप फिसल के वहाँ आ जाएंगे। इसके बारे में हम बहुत विस्तार में चर्चा करेंगे कि ये साधना कैसी करनी है। मैं तो आपको सिर्फ अभी इतना बताना चाहता था कि जो आत्मन है, जो साक्षी है, समय के परे है, अज्ञान और माया की वजह से वो समय से बंधा दिखाई देता है। अज्ञान हट जाता है तो आप नित्य हो जाते हैं, नश्वर नहीं रहते। बहुत आसान है, बस उस अवस्था में रहना, थोड़ा सा उसके लिए साधना चाहिए रहती है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, अनुभवकर्ता का या आत्मन का स्थान कहाँ है। मैंने आपको बताया कि अहम को आप अनुभवकर्ता पर बिठाइए, अनुभवकर्ता के स्थान पर स्थित कीजिए। तो प्रश्न उठेगा, ये है कहाँ, कहाँ जाऊँ मैं उसको देखने। ये स्थान के परे है, ये देश के परे है, इसका कोई स्थान नहीं है, जिसको आप देख भी नहीं सकते, जिसका माप भी नहीं है, जिसका कोई रूप भी नहीं है, जिसकी कोई मात्रा भी नहीं है, उसका क्या स्थान होगा। यदि अनुभवकर्ता अस्तित्व है तो आप अस्तित्व कहाँ रखेंगे, ले जाके कितनी दूर रखेंगे, कितने मीटर दूर, कितने किलोमीटर दूर, कितने मिलीमीटर दूर आप उसको रखना चाहेंगे। अस्तित्व एक है, उसका कोई स्थान नहीं है, स्थानों का अस्तित्व है, अस्तित्व का स्थान नहीं होता। वो कहना भी एक तरह का अर्थहीन सा वाक्य है कि अस्तित्व यहाँ है वहाँ है, ज्यादा से ज्यादा इतना आप कह पाएंगे कि इसका कोई स्थान नहीं है। और आत्मन क्योंकि अस्तित्व है, आपको उसका कभी स्थान नहीं मिलेगा। बहुत लोगों की भ्रांति है कि वो मेरे सिर में है, मेरे शरीर में कहीं है, हृदय में कहीं है, लेकिन आप प्रयोग कर सकते हैं, जो कि मैं सुझाव नहीं दूंगा, काट के देख सकते हैं कहाँ पे है कहाँ से आपका अनुभव हो रहा है। बहुत लोगों की भ्रांति है क्योंकि बहुत आपके सामने प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि आंखों के पीछे से मैं देख रहा हूँ, तो जो आंखों के पीछे से देख रहा है वो चित्त है, चित्त ने उसका स्थान निर्धारित कर दिया है। आंख बंद कर देंगे तो कहाँ है जो सुन रहा है, आपको ऐसा लगेगा सिर में कहीं है अनुभवकर्ता। कान भी बंद कर देंगे तो अनुभवकर्ता कहाँ है। तो ये जो भ्रांति है, ये जो भ्रम होता है कि अनुभवकर्ता सिर में कहीं है या शरीर में कहीं है, वो इंद्रियों की वजह से होता है, क्योंकि इंद्रियां सिर में है, इंद्रियों के जो अनुभव है वो सिर में दिखाई पड़ते हैं, प्रतीत होते हैं। अनुभवकर्ता वहां बैठा हुआ आपको नहीं दिखाई देगा। तो अभी प्रश्न कर सकते हैं कि क्या आत्मन सिर में बैठा है, यदि हाँ तो उसको कौन अनुभव कर रहा है, यदि आत्मन हृदय में है तो कौन देख रहा है उसको हृदय में बैठे हुए। यदि आप कहें कि मुझे ऐसा आभास होता है कि महसूस होता है, ऐसा ज्ञान होता है कि मैं शरीर में कहीं हूँ, आपका जो प्रत्यक्ष अनुभव है उसमें आपको अनुभव करता शरीर में बैठा हुआ दिखाई देना चाहिए, किसी रूप में, किसी रंग में, किसी न किसी अनुभव के रूप में, लेकिन आपका प्रत्यक्ष अनुभव ये है कि आपको तरह तरह के दूसरे अनुभव होंगे, इंद्रियों के अनुभव या शारीरिक अनुभव, शरीर के अंदर के अनुभव, लेकिन आपको कभी अनुभवकर्ता का अनुभव नहीं होगा, जो कि हमने देखा कि संभव ही नहीं है। अनुभवकर्ता का अनुभव संभव नहीं है, क्योंकि अनुभवकर्ता वो है, आत्मन वो है जो साक्षी है अनुभव का, वो साक्षी है, वो अनुभव नहीं है, तो उसका कोई स्थान नहीं है। इसके लिए एक अच्छा शब्द है कि वो अलौकिक है, अलौकिक, जिसका कोई लोक नहीं है, जिसका कोई स्थान नहीं है, जिसका कोई देश नहीं, अलौकिक, क्योंकि अस्तित्व का कोई स्थान नहीं है। स्थान अस्तित्व में है, लोक अस्तित्व में है, लोक आत्मन में है, उल्टा है। आपका शरीर आत्मन में है, आपका सिर आत्मन के द्वारा देखा जा रहा है, सिर को आत्मन नहीं दिख रहा, या अहम जो है, जो कहता है कि मैं, मुझे आत्मन का अनुभव हो रहा है, वो अहम स्वयं में एक अनुभव है, वो स्वयं एक परिकल्पना मात्र है, क्योंकि आप ना अहम को देख सकते हैं ना आत्मन को देख सकते हैं, सिर्फ शरीर को देख सकते हैं, इसलिए आप मान बैठे हैं तरह तरह की मान्यताएं कि शरीर में कहीं है या शरीर ही मैं हूँ। ये एक तरह का अज्ञान है, कठिन है, लेकिन आप परीक्षा करें, इसकी जाँच करें, प्रश्न करें इसको, तो उसकी सच्चाई सामने आ जाती है, उसका सत्य सामने आ जाता है कि अनुभवकर्ता का कोई स्थान नहीं है, कोई देश नहीं है, सारे देश, सारे स्थान, सारे लोक अनुभवकर्ता के अंदर हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, जो कि इतना सत्य नहीं है, इतना उचित नहीं है कहना, लेकिन आम भाषा में कह सकते हैं कि सारा समय और सारे स्थान अनुभवकर्ता के अंदर है। अनुभवकर्ता समय और स्थान में नहीं है, नित्य है, अलौकिक है, ये आपका प्रत्यक्ष अनुभव है, क्योंकि आप देखने जाते हैं, ढूंढने जाते हैं, तो नहीं मिलता हो किसी स्थान पे, नहीं मिलता हो किसी भी समय पे। ये साधना आपको, ये मनन आपको हमेशा करना है, जब तक आपके लिए वो पक्का नहीं हो जाता तब तक करना है, ढूंढना है आपको किस समय में क्या है, साक्षी कौन से समय में था, कौन से समय नहीं था, और किस स्थान पर है, किस स्थान पर नहीं है, और हमेशा उसकी परिभाषा ध्यान में रखनी है कि साक्षी साक्षी है, अनुभव नहीं है, साक्षी अनुभवों का साक्षी है, अनुभवकर्ता अनुभव कर रहा है, अनुभव नहीं है, अनुभवों के स्थान होते हैं, स्थान का स्थान एक परिकल्पना मात्र है जो जिसका अनुभव होता है, समय का अनुभव भी नहीं होता, वो बड़ी शुद्ध परिकल्पना है, आप उसको देख भी नहीं सकते। स्थान के बारे में आप बता सकते हैं कि ये स्थान है, ये मेरा घर है, लेकिन वो घर एक वस्तु है, स्थान केवल एक परिकल्पना, एक अवधारणा है, जो नक्शा है आपने बना रखा है, ये वस्तु यहाँ है, वो आपकी आपका घर यहाँ है, आपकी दुकान यहाँ है, आपका ऑफिस यहाँ है, आपका देश यहाँ है, ये सारी जो धारणा आपने बना रखी है वो विक्षेप है, वो विकल्प है, परिकल्पना है, वो धारणा मात्र है, मान्यता मात्र है। ये सारे अनुभव हैं, इनको आपने स्थानों का नाम दिया है, ये सारी वस्तुएं हैं जिनको आपने स्थानों पर रखा है, जो इनका अनुभव कर रहा है उसका कोई स्थान नहीं है। एक बड़ी विचित्र बात है, जिसका कोई स्थान नहीं हो आप आसानी से कह सकते हैं कि वो हर जगह है, इसीलिए उसको सर्वव्यापी कहा गया है। ऐसी कोई जगह आप नहीं ढूंढ सकते जहाँ की अनुभवकर्ता नहीं हो, क्योंकि यदि ऐसी जगह है जहाँ जिसका अनुभव नहीं हुआ है किसी को भी, कहीं भी, आपको भी नहीं, किसी को भी नहीं, तो वो जगह नहीं होने के बराबर है। वो अस्तित्व में नहीं है, वो जगह वो कल्पना में है, वो सत्य नहीं है। तो ऐसी कोई जगह नहीं है जिसका अनुभव नहीं हुआ हो, ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसके बारे में अनुभवकर्ता को ज्ञान नहीं हुआ हो, इसीलिए वो सर्वव्यापी है, इसीलिए उसको पारलौकिक भी कहते हैं। अलौकिक मतलब कहीं नहीं होना, पारलौकिक मतलब हर लोक के बाहर होना, हर जगह होना, सर्वव्याप्त है वो। तो ये भी बड़ी विचित्र बात है, बुद्धि के परे है, मैं मानता हूँ। इसमें ज्यादा बुद्धि लगाएंगे तो सिर दर्द हो जाएगा, कुछ और नहीं मिलेगा। इतना कहना काफी है कि न कोई जगह है न कोई समय है इसका। अनुभवों की जगह होती है, अनुभवों का समय होता है, वो सारी परिकल्पनाएं होती हैं, अवधारणाएं होती हैं, जो कि चित्त के सहूलियत के लिए है। इससे काफी आसान हो जाता है यहाँ पर जीवित रहना इस जगत में। जगत ऐसा चित्त निर्मित है, ऐसी अवधारणाओं का बना हुआ है जगत, अनुभवों से निर्मित करता है चित्त जगत को। इसीलिए माया कहा गया है जगत को, क्योंकि आपके प्रत्यक्ष प्रमाण उसका नहीं मिलता, चित्त निर्मित ही मिलता है हमेशा जो भी मिलता है। तो अनुभव के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो इसकी गहराई में जाएंगे कि चित्त उसका निर्माण कैसे करता है, क्यों माया है, क्यों असत्य है सारा जगत, सारे स्थान, सारा काल, सारा समय। न भूतकाल है, न वर्तमान है, न भविष्य है, इसीलिए शिव है, क्योंकि सब कुछ नष्ट कर देता है। त्रिकालिक है, यानी कि सभी कालों में बराबर है वो, इसके परे है जो ब्रह्मन है, जो अस्तित्व है, जो कि आत्मन के बराबर है। उस पर आप ध्यान करेंगे तो हर अवधारणा नष्ट हो जाती है, हर तरह का असत्य नष्ट हो जाता है, हर तरह की माया नष्ट हो जाती है। बचता क्या है? सिर्फ अनुभवकर्ता बचता है, सिर्फ आत्मन बचता है। यदि आप उसको मैं करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर आप छूट जाते हैं, बाकी जो नश्वर या असत्य से आपका आपकी मुक्ति हो जाती है, जीवन मुक्त हो जाते हैं आप। करना इतना है, समझना इतना है कि मैं आत्मन हूँ, मैं ब्रह्मन हूँ, मैं अस्तित्व हूँ, जो कि आपका अपरोक्ष अनुभव है। क्योंकि यदि आप इन मान्यताओं की परीक्षा करने जाएं, सत्य के तराजू में तोलने जाएं, तो सब एक के बाद एक, एक के बाद एक आप देखेंगे नष्ट होता जाता है। स्थान नष्ट हो जाता है, समय नष्ट हो जाता है, भूतकाल नष्ट हो जाता है, भविष्य नष्ट हो जाता है, जगत पूर्ण नष्ट हो जाता है।
आप सुन रहे थे बोधि वार्ता तरुण प्रधान के साथ। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस श्रृंखला के अगले भाग में। नमस्कार।